पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 नारायण
इसने प्रकृति को मन माया को स्वीकार किया, प्रकृति को स्वीकार किया, जड़ता को स्वीकार किया, उसमें स्थित हो गया, प्रकृतिस्थ हुआ। इस कारण से इसे जीव बना है। अब इसने जितना प्रकृति को मान लिया, ले लिया, स्थित हो गया, स्वीकार कर लिया, उसी कारण से और उतने ही अंश में इसके एक अभाव हो गया। अभाव वाली वस्तु को पकड़ने से इसको अभाव का अनुभव होने लग गया। उस अभाव की पूर्ति के लिए ये चेष्टा करता है। अब वो कमी क्या है, किस चीज की है, इसकी क्या जची हुई है, इसमें फर्क है। कमी है तो वास्तव में जड़ता के स्वीकार करने से, और उस जड़ता की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसको अपनी आवश्यकता मान लेता है। तो जीव क्या होता है कि जो जड़ता की भी चाहना करता है, चिन्मयता की भी चाहना करता है, भोग भी चाहता है और मोक्ष भी चाहता है, सुख भी चाहता है और निर्दिष्ट सुख को भी चाहता है। ऐसी चीज एक होगी, इसी को संतों ने चित जड़ ग्रंथि का जड़ चेतन की गांठ दोनों की इसके भीतर चाहना है। तो दोनों की चाहना होते हुए भी जब तक ये विषयों की तरफ वृत्ति रखता है, तब तक पदार्थों की संग्रह की भोग की चाहना है, यही प्रतीत होता है, प्रतीत यही होता है। परंतु मोक्ष की चाहना ये मिटेगी नहीं, वो तो है ही भीतर है, असली वही चाहना है, असली चाहना वही है तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति की, मुक्ति की, तत्व की, ज्ञान की, यही असली चाहना है। उस असली चाहना को न पहचानने के कारण से ये जड़ चीजों की चाहना करता है, और जड़ चीजों की चाहना करता है एक तो न पहचानना कारण हुआ, एक जो जड़ का अंश जो शरीर है ना, ये इस शरीर के साथ में मैंपन और मेरापन कर लिया। अब इसकी चाहना भी इसको हो गई। जैसे जो भाई ब्याह गया, अब उस स्त्री के गहना कपड़ा चीज चाहिए, वही गहने कपड़े की चीज की चाहना उस पुरुष के हो गई, हमारे घर में ये चीज चाहिए, ये चाहिए, गहना चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो स्त्री की चाहना अपनी चाहना क्यों हो गई, कि अपनी चाहना यूं हो गई कि उस स्त्री के साथ में अपना एकता मान ली कि एक है, हम दोनों मिलकर स्त्री पुरुष एक शरीर है, गृहस्थ होता है पूरा, सांगो पांग स्त्री पुरुष दोनों होते तो पूरा गृहस्थ, पुरुष न रहे तो आधा गृहस्थ, स्त्री न तो आधा गृहस्थ, तो हम पूरे हुए हैं जब स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तब वो अपना मानने के कारण से उसका सुख अपना सुख, उसका दुख अपना दुख। इसी तरह से ही ये परमात्मा का अंश तो है, परमात्मा का जीवात्मा, परंतु ये स्थित हो गया प्रकृति में, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत, अंश तो मेरा और इस जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बन गया, तो बन गया उस प्रकृति को लेकर के। और कब बना, तो सनातन के अनादिकाल से ही, तो सनातन अनाधिकार का भी अर्थ हो जाता है, और दूसरा के जीव भूत सनातन ये सदा से जीव है, सदा से ही, और दूसरा अर्थ होता है इसका कि सनातन अंश है, परमात्मा का ही अंश है सदा से। हम सनातन के दो अर्थ कर दिए, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सनातन का एक अर्थ किया कि अनाधिकार से, कब से ये जीव बना, कि ये नहीं सदा से है। दूसरा अर्थ किया कि भगवान कहते हैं सदैव मेरा अंश है, सदैव मन मेरा घनिष्ठ अंश है मेरा ही अंश। हाँ तो अनुत्पन्न हम लेते हैं, अनादि कहने का तात्पर्य है अनुत्पन्न लेते हैं, उत्पन्न नहीं हुआ। परंतु खास अनादि कहने का क्या तात्पर्य है, वास्तव में तो दार्शनिक लोग जाने, मेरे पर तो असर ये पड़ा है कि उसका विवेचन नहीं कर सकते, इस वास्ते अनादि कह देते। आप ही मान ले क्या करें, उसका निर्वचन नहीं कर सकते, इस वास्ते अनादि कहते हैं। अनादि कहते हुए संतों ने कह दिया है कि जड़ चेतनी गांठी परी गई, ऐसा भी कह दिया। अनादि कहते हुए ऐसा भी कह दिया ये जड़ चेतनी की गांठ पर गई, पर गई अनादि का शादी हो गया, पैदा हो गया। तो अनादि का तात्पर्य तो इस तरफ वृत्ति न लगने में हमें दिखता है, इसकी मूल की तरफ खोज मत करो, तुम खोज करो मिटे कैसे इसकी, ये हमें तो उपयोग मालूम देता है इसका। हाँ तो ऐसा ही होगा, हमें याद नहीं है, हमें तो इतनी बात समझ में आती है, अनादि कहने से ये तात्पर्य हो गया कि तुम खोज मत करो पीछे की, तुम तो खोज करो अगाड़ी की। आप और हम कहाँ से आए, सवारी से आए, पैदल आए, किस दिशा से आए, इसकी जरूरत क्या है, अब कहाँ जाना है ये पूछो तो वो ठीक निर्णय होगा, आगे कहीं से आ तो गए ही, अब इसमें क्या पूछना है। इस तरह से अनादि का तात्पर्य मालूम देता है। तो इसके अब चाहना किसकी है, अनादिकाल से ये बना और चाहना किसकी है, तो भोग और मोक्ष दो चाहता है, हरेक प्राणी मात्र चाहते हैं। तो हरेक प्राणी मात्र चाहते हैं, उनमें अनुभव मोक्ष चाहते हैं ये नहीं होता है, अनुभव हम भोग और संग्रह चाहते हैं ये होता है, पदार्थों का संग्रह कर लें और उनसे हम सुख ले लें, ऐसा ही अनुभव में आ रहा है। परंतु इस अनुभव के साथ वो भी अनुभव है, गहरी रीति से देखें तो मुक्ति चाहते ये भी अनुभव इसके साथ में है, कैसे कि धन भी इतना हो जो सबसे बढ़कर, और सुख भी इतना हो जो सबसे बढ़कर, और सुख ऐसा हो जो कभी दुख न हो, और धन ऐसा हो जो कभी निर्धनता न हो, मन अभाव भी न हो और कमी भी न हो, ऐसा सुख चाहते हैं। तो अभाव न हो और कमी न हो ऐसा सुख मोक्ष ही है, परंतु उसका नाम मोक्ष ये समझता नहीं है, चाहना उसी की है। उसी की चाहना होते हुए भी पदार्थों का संग्रह और भोग चाहता है, यही इसके अनुभव में आ रहा है। इस बात से आपने कहा भी आत्मन सुकामाय सर्वम प्रियो भवति, सबका सब प्यारा होता है अपनी कामना के लिए, तो अपनी कामना के लिए ही होता है, परंतु उसको ये मालूम नहीं देता है। स्थूल रीति से अगर देखो तो स्थूल रीति से मालूम क्या देगा, ख्याल करना, स्थूल रीति से ये बात ठीक मालूम देती, आत्मन सुकामाय ये भी मालूम ठीक देती है। कैसे है कि स्थूल रीति से आत्मा शब्द करके शरीर है, वहाँ स्थूल रीति से फिर जड़ चेतन का विवेक करके चेतन मैं हूँ ये नहीं होता है, वहाँ तो जो बना हुआ पुद्गल यही मैं हूँ। अब ये जब बच्चे के साथ स्नेह करता है तो वो स्नेह अपने सुख के लिए करता है, मतलब इस शरीर के आराम के लिए करता है, धन के साथ करे, स्त्री के साथ करे, स्त्री पति पुत्र के साथ करे, मित्र मित्र के साथ करे, कोई वक्ता श्रोता के साथ करे, श्रोता वक्ता के साथ करे, ऐसा कोई भी संगठन होता है, प्रेम होता है, तो वो होता है अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ शरीर को लेकर के, और जो प्रेम होता है वो भी आत्मन सुकामाय है अपनी कामना के लिए, तो अपना वहाँ शरीर हो जाता है, अपना मानने में भूल है, बात तो वो भी वही रही, वही आत्मन सुकामाय है, परंतु अपना स्वरूप क्या, अपना स्वरूप ये, तो इसके लिए कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, जल चाहिए, आराम चाहिए, सामग्री चाहिए, इसके लिए इस बार ये शरीर के लिए ही सब प्यारा होता है, अपने कामना के लिए, तो भी ये श्रुति ठीक बैठ जाती है। परंतु बात जब हम करते हैं तो हमने याद तो कर लिया आत्म अनात्म का विवेक, और प्रवृत्ति हम देखते हैं अविवेक वाली, ये दोनों जब मिलान करते हैं तो आप वाली शंका पैदा हो जाती है। विवेक तो लगा रखा शास्त्र का, और व्यवहार अपने होता है वो रखा अपने अनुभव का सामने, तो अनुभव में तो भाई ऐसा प्रतीत नहीं होता, हमें भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए हम तो अन्न खाते हैं, प्यास लगी तो जल पीते, प्यास मिटाने के लिए, अपने आत्मा के लिए तो हम नहीं चाहते, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा तो भूख प्यास से रहित है, ये तो बातें सुनी हुई शास्त्रों की पढ़ी हुई, और भूख प्यास मेरे को लगती है ये होता है अनुभव, शरीर के साथ एक मानने के कारण से, तो इनमें दोनों में शंका पैदा होती, एक बात वहां की ले ली, एक इधर की ले ली, तब शंका पैदा हो गई। अगर आप इधर की लेते तो आत्मन सुकामाय श्रुति लग जाती, और उधर की लेते तो भूख प्यास की आपके नहीं होती, किंतु भूख प्यास के लिए जो इच्छा होती है मन में, अब थोड़ी सी बारी बात है, केवल आत्मा की तरफ आपका लक्ष्य होता तो भूख प्यास जो लगती है शरीर को, प्राणों को खुदा पिपासा प्राणस्य, तो ये प्राण को जब खुदा पिपासा लगी तो आत्मा के स्वरूप में आप अपने आप में स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो भाई जल की एक जरूरत दिखती है, जल की और अन्न की आवश्यकता प्रतीत होती है, ऐसा तो आपके भान होता है, भूख लगी है प्यास लगी ये प्रतीत होता, परंतु मैं भूखा प्यासा हूं ये प्रतीत नहीं होता। कब? कि जब शरीर से अपने को आप अलग समझते तब, जैसी शास्त्र में बात कही वैसे ही अनुभव होता, तो भूख प्यास की जरूरत दिखती शरीर के लिए, फिर तो बात ये होती अपने लिए तो भाई ना जल की जरूरत है, ना अन्न की जरूरत है, ना कोई वस्त्र की जरूरत है, ना किसी की जरूरत है। क्यों? कि अपना जो स्वरूप है उसमें तो कोई विकार नहीं है, विकृति नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई अभाव नहीं है, तो उसके लिए जरूरत किस बात की होती? उसके लिए तो जरूरत है ही नहीं, जरूरत है जरूरत के लिए ही जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है और जिसको जरूरत है वे दोनों एक ही धातु की चीज है, एक धातु की चीज में एक ही जरूरत हो जाती है। अरे मिट्टी कम होती है सड़क में तो वहां मिट्टी डाल दो सड़क सीधी हो जाएगी, सजाती की होती है इस वास्ते बिजाती की होती नहीं, तो अपने लिए होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने लिए इनकी प्यारापना होता है तो शरीर को लेकर तो शरीर के लिए होता है, और आत्मा का जब ज्ञान होता है तो अपने लिए कोई प्यारा होता ही नहीं, अपने लिए तो आप ही प्यारा होता है, अपने लिए आप ही प्यारा होता, कोई प्यारा और है ही नहीं अपने लिए। तो इस वास्ते अपने लिए तो आवश्यकता कभी हुई ही नहीं, जरूरत हुई ही नहीं कभी, किंतु जड़ता को स्वीकार कर लिया तब अपने लिए जरूरत हुई, आत्मा के लिए जरूरत होगी पदार्थों की। क्यों हो गई? कि जितने अंश में इसने जड़ को पकड़ लिया उतने अंश में जरूरत तो असली है आत्मज्ञान की, उसमें जितनी जड़ता बढ़ ली उसके निवारण करने की, और वो तत्व न समझ करके जड़ता के लिए जो जरूरत थी उसको अपनी जरूरत समझने लग गया, ये भूल हुई। जितने जितने जड़ता को इसने स्वीकार कर लिया उतना उतना इसने पूर्ण होते हुए भी अभाव पैदा कर लिया, और वो अभाव पूर्ति के लिए पूर्ण होने के लिए हुई पीछी इच्छा, और जड़ता को इसने छोड़ा नहीं, इस वजह से जड़ता की पूर्ति की इच्छा मेरे हो गई, ये है उलझन। हाँ, चेतन घन होता हुआ भी ये स्वीकार कर लेता है तो इसमें अभाव सा प्रतीत होने लग जाता है, अभाव न होते हुए भी घन है, वो घनता का तो अनुभव नहीं हो रहा है। जितनी आप बात कहोगे शास्त्रीय कोई भी शब्द आप बोलोगे तो घनता का अगर अनुभव होगा तो अभाव नहीं रहेगा, और अभाव का अनुभव होता है तो घनता शब्द में नहीं अनुभव में नहीं आई है। हाँ, तो प्रश्न तो उठ रहा है अनुभव में नहीं आने से, जो अनुभव हो रहा है हमारे व्यवहार में उसको लेते हैं और हम पकड़ लेते हैं शास्त्रीय सिद्धांत को, तो दो बात मिलने का नाम शंका है। कुछ नहीं जानते शास्त्र की बात तो शंका होती नहीं, हम हमारे लिए करते हैं सभी यूज करते सीधा ही, हम तो पानी पीने के लिए करते हैं, हम तो रोटी खाने के लिए करते हैं, कपड़े के लिए करते हैं, हमारे बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए हम चेष्टा करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हम सभी अपने लिए ही करते हैं। स्त्री से प्रेम करे, पुत्र से करे, मित्र से करे, धन से करे, अपने लिए तो करते हैं, उसके लिए थोड़ी करते हैं, उसी लिए नहीं करते। मर जाते तो रोते, तो अपने लिए रोते हैं, गहरे उतरते हैं तो उसी लिए थोड़ा ही रोते, उसकी क्या दशा हुई थोड़ा ही रोते हैं, कहीं भी कह दे तो मोह पूर्व की कहते हैं, है तो अपने स्वार्थ के लिए। तो इस वास्ते ऐसा तो अनुभव होता है, इस वास्ते श्रुति कहती थी ऐसा ही अनुभव है। परंतु जब अपने स्वरूप को अलग आप समझोगे तो अपने लिए दूसरा प्यारा होता है, ये बात लागू नहीं होगी। ये बात लागू तभी होती है कि जब तक जड़ के साथ संबंध मिला हुआ है, और जड़ की कमी कभी पूर्ति होती नहीं, वो जड़ खुद ही अपूर्ण नहीं है, पूरा का पूरा जड़ सबका सब प्राकृत पदार्थ मिल जाए सबका सब तो भी अपूर्ण नहीं है, उस अंक अपूर्ण है। प्रकृति प्रकृति का कार्य मात्र जितना अंक देख लो अपनी दृष्टि से, वो सबका सभी अपूर्ण है, पूर्ण परमात्मा है। तो बिना परमात्मा की प्राप्ति के इस जीव को पूर्णता मिलती नहीं, और बहन पड़ गया जड़ता के कारण से पूर्ति होगी, ये खास बात है, खास ग्रंथ यहाँ है। अब उस कमी को पूर्ति करना चाहे जड़ता के द्वारा, और वो जड़ता के द्वारा होनी है नहीं, परमात्मा की प्राप्ति भी ये चाहता है तो भी जड़ता के द्वारा चाहता है, जड़ता को साथ में रख करके चाहता है, इंद्रियों से हम भजन कर लेंगे, मन से हम चिंतन कर लेंगे, बुद्धि से उसका निर्णय कर लेंगे और हाथों से हम दान पुण्य कर लेंगे, द्रव्य से हम दूसरों को उपकार करके परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, ये भाव भी इसकी जचा है। तो जो कुछ चाहता है जड़ते के द्वारा ही पूर्ति चाहता है, जड़ता के द्वारा पूर्ति होती नहीं वास्तव में। इसके बाद उल्टा कोई न समझे भी दान पुण्य को मैं खराब समझता हूँ, खंडन कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, परंतु जड़ता के द्वारा पूर्ति नहीं हो सकती चिन्मयता की। तो जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। वो जड़ता के त्याग का तरीका है दान करना है, पुण्य करना है, तीर्थ करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, उपकार करना है, सेवा करना है, ये त्याग का तरीका है। जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करने का तरीका है, न कि परमात्मा की प्राप्ति करने का तरीका। परंतु प्राप्ति का तरीका कोई माने तो अपने निषेध नहीं करते, क्योंकि जड़ता मिटाने से प्राप्ति होगी, प्राप्ति का भी तरीका ही है ये, इस वजह से वो तरीका मान लेते हैं। तो वास्तव में चिन्मयता की प्राप्ति का तरीका है जड़ता के साथ संबंध विच्छेद करना। तो उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, इस वजह से कहते हैं नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं करना है। वो तो नित्य प्राप्त है, और वास्तव में देखा जाए तो नित्य प्राप्त चेतन तत्व अपना स्वरूप ही है, और कोई नित्य प्राप्त नहीं है। कैसे नहीं नित्य प्राप्त, ख्याल करना जरा, नित्य प्राप्त उसके सिवा दूसरी चीज नित्य प्राप्त है ही नहीं। बचपन से आज दिन तक का आपका मेरा शरीर माना जाए तो शरीर बचपन का था वो है क्या आज, ये तो बिल्कुल रोजाना बदलता है, प्रति क्षण बदलता है। नित्य प्राप्त का अप्राप्त ही है, पदार्थ जितने सब अप्राप्त है, क्षण परिणामिनो भावा रीते स्थिति शक्ति, उस स्थिति शक्ति के सिवाय सबके सब भाव क्षण परिणामी है। तो क्षण परिणामी तो प्राप्त कहाँ है, प्राप्त तो जो हमारे कब्जे में रहे तब होता है, जावे वो प्राप्त कहाँ है। गंगा जी का जल बह रहा है, हमें दिखता है वहीं तक जल भरा है साहब, जहां तक भरा वहीं तक, कल से आज वहां तक भरा है, भरा नहीं एक क्षण भी स्थिर नहीं जा रहा है, तो वो जल है नहीं, जल प्राप्त नहीं है, जल तो अप्राप्त ही है। अप्राप्त अगर कहो तो लोग हंसेंगे, कैसा मूर्ख, अप्राप्त क्यों, प्राप्त है ना, स्नान कर लेते हैं, जल पी लेते हैं, ठंडा सा मालूम देता है, प्राप्त है, तो ऐसा दिखता है प्राप्त, प्राप्त है नहीं। कि प्राप्त कहाँ है, जहाँ हाथ सो वो तो जल गया, दूसरा आ गया, तीसरा गया, चौथा, वो तो जा रहा है, प्राप्त है ही नहीं। इस तरह से कोई भी संसार का पदार्थ है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, कोई भी प्राप्त नहीं है, प्राप्त अपना आप ही है, प्राप्त ही वही है। अब उसमें ये कर्ता बनता है, भोगता बनता है, दृष्टा बनता है, घ्राता बनता है, रसयिता बनता है, स्पृष्टा बनता है। इसमें भी आप ख्याल करके देखें, जो वेदांत के सिद्धांत वाले भाई बहन विशेष ध्यान दें, बड़ी बढ़िया बात है, साधक के बड़ी काम की। हम जब देखते हैं, भाई मैं देख रहा हूं तो देख रहा हूं, फिर दूसरे समय में नहीं बोल रहा हूं, तीसरे समय में खा रहा हूं, चौथे समय में जा रहा हूं। अब विचार कर देखो, देखना अपना निरंतर कहां रहा, खाना अपना भी निरंतर कहां रहा, जाना भी हमारा निरंतर कहां रहा, बोलना भी हमारा निरंतर कहां रहा। और जो निरंतर नहीं रहता वो तो अंतर पड़ता है, तो जाता रहता है, रहा कहां, रहा नहीं तो प्राप्त कैसे, तो प्राप्ति नहीं तो नित्य प्राप्त कैसे। जब प्राप्त ही नहीं तो इसको नित्य प्राप्त कैसे कहें, ये तो प्राप्त है ही नहीं। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, इसलिए जो प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया। किसके बल पर, कि जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त मानने के बल पर, ये हमारे नहीं प्राप्त को प्राप्त माना है। इतने अंश में ही हमारी अधूरापन की बात है, इतने में ही जिज्ञासा है, इतने में ही हमारी मुमुक्षुता है, इतने में हमारा साधन है, यही हमारा कर्तव्य है। जो कुछ है जो इतने में ही है, जो हमने नित्य प्राप्त नहीं है उसको अपना प्राप्त मान लिया। इसके कारण से नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त देखने लग गए, क्योंकि उधर से दृष्टि हट गई, अप्राप्त में ही दृष्टि लग गई, हमारा दृष्टिकोण ही अप्राप्त की तरफ हो गया, और अप्राप्त को ही हम उन्नति मानने लग गए। ये ज्यादा मिल जाए उन्नति, चला गया तो अवन्नति हमारी होगी, हमारी कोई उन्नति है ना अवन्नति है, हमारा तो है ज्यों का त्यों है, परंतु इसकी उन्नति से उन्नति, इसकी अवन्नति से हमारी अवन्नति, ये हमने मान लिया। इस मानने के आधार पर अपने में कमी मालूम देती है, क्यों, ये मानने से कमी, और कमी है नहीं, और वो मानने से क्या हुआ कि जितनी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के भी अपने कर्ता बन गए। जैसे हमारे जरूरत हुई पदार्थ की, जो ही हम करने लगे, ये एक बड़ी सिद्धांत की बात है कि जो ही इसके भोगों की मन में आती है, त्यों ही इसे करने के मन में आती है। और जब तक करने की मन में आती है तब तक इसी भोग की इच्छा है, और जब भोगों की इच्छा नहीं रहेगी, संग्रह की इच्छा नहीं रहेगी, तो फिर इसके करने की इच्छा नहीं रहेगी, इसका जानने की इच्छा हो जाएगी। पहला मानो बात क्या है, वो एक ही बात है, मैंने जब स्थूल रीति से पदार्थों की तरफ कह दिया, आपने भाव की तरफ कह दिया, तो भाव चाहे पदार्थ दोनों ही है। इसको वेदांत में पदार्थों को अर्थाध्यास कहा है, भाव को ज्ञानाध्यास कहा है, बस एक ही बात है, दो चीज है ही नहीं, उसको अर्थाध्यास कह दिया, ज्ञानाध्यास कह दिया। हाँ, वो प्राप्त प्रतीत हो रही, तो भीतर में बात क्या है कि जितने अंश में अपने स्वरूप से हम च्युत हो गए, च्युत न होते हुए च्युत हो गए, और न होते हुए अपने स्वरूप के साथ में पदार्थ को मान लिया, जैसे हमारी अवस्था उसको स्वरूप मान लिया, हमारी जागृत अवस्था ये स्वरूप हमारा है, सुषुप्ति अवस्था ये हमारा स्वरूप है, स्वप्न अवस्था ये हमारा स्वरूप है, बाल्यावस्था ये हमारा स्वरूप है, जवान अवस्था ये हमारा स्वरूप है, वृद्धावस्था ये हमारा स्वरूप है, जो अवस्था होती है परिवर्तनशील अवस्था है उसको अपना स्वरूप मान लिया, तो स्वरूप तो वास्तविक स्वरूप स्वरूप है, वो है नित्य प्राप्त, और अप्राप्त को स्वरूप में अध्यारोप कर लिया। अब वो अध्यारोप के बीच में चाहे तो पदार्थ अवस्था को कह दो, चाहे अवस्था के ज्ञान को कह दो, वो आपकी मर्जी, जैसे सुगम पर जैसे कह दो। हाँ, इस वजह से मन भी अप्राप्त है, और मन का बोध है, ज्ञान है, वो भी अप्राप्त है, बुद्धि भी अप्राप्त है, और बुद्धि का निश्चय वो भी अप्राप्त है, बुद्धि का निर्णय वो भी अप्राप्त है, जो इस प्रति विषय का निर्णय वो तो अप्राप्त ही है। वास्तव में हमने चाहे पदार्थों को भाव रूप से माना, चाहे पदार्थ रूप से माना, इसको मान लिया ये गलती हुई है, और इसको स्वीकार किया पकड़ लिया ये गलती हुई है, और इसमें जितनी दृढ़ता से आस्था अधिक बन गई उतनी हमारी भूल बड़ी हो गई है, और जितनी आस्था कम होगी उतनी हमारी भूल कम हो गई है, और सर्वथा मिट गई तो भूल मिट गई है, और मिटने बाद है जो तो रह गया है। ठीक है, तो ये अनित्य है ना, अब जा ध्यान देना। आपका प्रश्न है कि ये पदार्थ है, मन बुद्धि आदि ये औजार है, मानो ये ग्राह्य और ग्रहण है, ये सब अनित्य है, ये तो हमें मालूम देता है, ये तो अनुभव में आता है, परंतु ये अप्राप्त है, ये अनुभव में नहीं आ रहा है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, साधक का प्रश्न है। अनित्यता दिखती है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण सब में अनित्यता मालूम देती है, क्यों? वो नित्य भाव नहीं रहता, वो नित्य शक्ति नहीं रहती, वो नित्य स्वरूप नहीं रहता, इस वास्ते ये अनित्य है, ये तो ठीक दिखता है, बट अप्राप्त कैसे हैं? हम काम ले रहे हैं इनसे, मन बुद्धि से काम लेते हैं, इंद्रियों से काम लेते हैं, पदार्थों से हम काम लेते हैं, लेते हुए भी ऐसे झूठ मूठ कैसे कहते हैं प्राप्ति नहीं है ही नहीं, अप्राप्त कैसे कहते हैं? तो ध्यान देना, ये जो हम काम लेते हैं इनसे, वो काम कहाँ तक लेते हैं? आंख से हम काम रूप का ही ले सकते हैं, शब्द का नहीं ले सकते, कान से शब्द का ही काम ले सकते हैं, कान से रूप का नहीं ले सकते, तो काम लेने में भी इंद्रिय अपने अपने विषय को काम इंद्रिय तक ही ले रही है, और इंद्रियों का विचार मन तक पहुंचता है, मन निर्णय करता है उनका, तो वहां तक ही काम आती है। अगर ही काम नहीं आती, इंद्रियों का जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और चलना फिरना लेना देना खाना आदि, ये कर्म इंद्रियों का विषय, ये दोनों विषय पहुंचते हैं मन तक, इंद्रियां मन तक पहुंचाती है, ये तो विषय रहा, यहाँ रहा इंद्रियां, यहाँ रहा मन, मन के पास दोनों पहुंचाई, तो दोनों पास ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों मन में पहुंचाई, इस वजह से मन में क्रिया भी मालूम देती है, ज्ञान भी मालूम देता है। तो ज्ञान और क्रिया क्या है? इंद्रियों का आभास है, और मन में कोई ज्ञान है कोई क्रिया है, किंतु कर्म इंद्रियों का आभास पड़ने से क्रिया मालूम देती है, ज्ञान इंद्रियों का आभास पड़ने से मन में ज्ञान मालूम देता है, तो ये मन ने इनका निर्णय किया, इतना बारीक न समझो तो यूं ही सही, मन ती क्रिया और पदार्थ पहुंचे, विषय पहुंचे, विषय और क्रिया ये मन तक पहुंचे, तो हम काम में लेते हैं विषयों को कहां तक? इंद्रियां तक, और उनके भावों को लेते हैं मन तक, और मन से अगर ही पहुंचते हैं तो बुद्धि तक, तो बुद्धि में क्या होता है कि निर्णय करती है, बुद्धि अलग अलग विषयों का अनुभव नहीं करती है किंतु विषयों का निर्णय करती है, अलग अलग विषयों का अनुभव करती है इंद्रियां, और इंद्रियां के ऊपर रहता है मन, मन किस इंद्रिय के साथ संबंध रखता है, मालूम देता है कि मन उस विषय का अनुभव कर रहा है, वास्तव में विषय का अनुभव इंद्रिय कर रही है, परंतु मन उसके साथ में तदाकारों से अनुभव करता हुआ मालूम देता है, परंतु बुद्धि अनुभव न करती हुई निर्णय करती हुई मालूम देगी, और निर्णय कर इंद्र का विवाद इधर हो गया। अब बुद्धि का जो प्रकाशक है, जिसमें बुद्धि आपको दिख रही है, जैसे हमारे नेत्रों के सामने यंत्र दिखे, मनुष्य दिखे, इस तरह से बुद्धि के सामने मन और इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, ये जो सबके सब दिख रहे हैं जिस प्रकाश में, उस प्रकाश तक आपका कौन सा विषय पहुंचता है, और किसको आप काम में ले रहे हो? ये जो कहते हो हम काम में लेते हैं, इनको हम अनित्य कहते गए, अनित्य तो कहते हैं बट इनको नित्य अप्राप्त कहते गए, तो प्राप्त कहाँ हुआ? ये प्राप्त अनित्यता प्राप्त हुई है इंद्रिया तक, प्राप्ति हुई है मन तक, प्राप्ति हुई है बुद्धि तक। तो बुद्धि इंद्रिया और मन उसी धातु के, जिस धातु का विषय है उसी धातु के है, तो उसी को उसी की प्राप्त हुई। आपको क्या प्राप्त हुआ? अप्राप्त है सदा, एक क्षण भी प्राप्त नहीं बता सकते, नहीं बता सकते भी अनित्य केवल नहीं है, प्राप्त ही नहीं है किंचित मात्र भी, बिल्कुल सदा के लिए अप्राप्त है ही नहीं प्राप्त, केवल इनको इनको प्राप्त हो। जैसे अभी एक काठ गंगा जी कहता हुआ चला जाए और मैं देख कहता हूँ हमारा काठ चला गया, हमारा चला गया, हमारा चला गया, कहने लग जाऊँ तो आप लोग पागल समझोगे, क्या कहते हो स्वामी जी, हम रोने लग जाए बड़े जोर जोर से, क्या हुआ कि दो हमारे वो लकड़ी चली गई? कहते कहाँ से आई? ये तो पता नहीं है, कहाँ जाएगी ये पता नहीं है, किस वृक्ष की ये भी पता नहीं है, किसने छोड़ी किसको तो पता नहीं है, तो किसकी? मेरी है। तो हंसो गया, कहते जिसका पता कुछ भी नहीं मेरी है। इसी तरह से आत्मा के साथ संबंध नहीं, सब प्रकृति का कार्य, मन प्रकृति का कार्य, बुद्धि प्रकृति का कार्य, प्राण प्रकृति का कार्य, शरीर प्रकृति का कार्य, विषय पांडु प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य प्रकृति में हो गए। अरे उसे मैंने कर लिया, मैंने जान लिया, मैंने भोग लिया। तेने कहाँ भोग लिया? तेरे पास भी बिल्कुल स्पर्श ही नहीं है, सर्वथा असंस्पृष्ट है। आप लोग कहते अप्राप्त कैसे? मतलब अप्राप्त ही है, प्राप्त हुआ नहीं कभी, सुपने में भी कभी हो सकता ही नहीं, ब्रह्मा जी की ताकत नहीं प्राप्त करा लेंगे। अप्राप्त है तो बिल्कुल असंबद्ध है, हमारे साथ संबंध नहीं है पदार्थों का, भोगों का, क्रियाओं का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, कभी संस्पर्श हुआ ही नहीं हमारे साथ में। अब मैं होते हुए मैंने मान लिया तो उसको अनित्य तो मान लिया, अनित्य किससे मान लिया? मन को पकड़ा अपने आप में, बुद्धि को अपने आप में पकड़ा, फिर पदार्थों को देखा तो अनित्य माना बुद्धि को पकड़ करके। अगर इंद्रियों को पकड़ के मानते अनित्य भी नहीं कहते, सुख कहते आप, सुख है पदार्थ यूं कहते इंद्रियों को पकड़ते तो, अगर बुद्धि के द्वारा पकड़ा तो अनित्य कहोगे, पर बुद्धि से अगर जाओ तो अनित्य नित्य क्या है ही नहीं, अप्राप्त आपके साथ संबंध ही नहीं है, तो इस वजह से नित्य अप्राप्त है। और वो जो स्वरूप है वो अप्राप्त कभी हुआ ही नहीं, अपना आप अप्राप्त कैसे होगा? वो तो नित्य प्राप्त स्वतः प्राप्त है, स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, और ये नित्य अप्राप्त है। अब नित्य अप्राप्त के बीच में केवल मान लिया तो अप्राप्त में प्राप्त मान लिया और न करने में करना मान लिया, करना होता है प्रकृति के द्वारा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियाएं होती है, परंतु अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है, अहंकार के कारण मोहित हो गया ये मूढ़ आत्मा, बुद्धि मारी गई, उस बुद्धि मारी जाने के कारण से मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। मैंने दृष्टांत दिया था कि जैसे एक गाड़ी है उस पर चढ़े हुए जा रहे हैं, एक स्टेशन पर ठहरी है हमारी गाड़ी और सामने दूसरी गाड़ी आ गई दो लाइन पर, हम वहां बैठे तो उसी गाड़ी आकर के ठहरी और फिर वो चल दिया, हम पैसे बैठे देखते हैं तो मालूम होता है हमारी गाड़ी चल दी। जब तक उस गाड़ी की तरफ हमारी दृष्टि रहती है, हम बीच में बैठे डब्बा में बैठे हुए देखते हैं तो देखते हैं वो गाड़ी हमारी चल पड़ी, यूं दिखता है, परंतु उसी दृष्टि को उठाकर अगर स्टेशन की तरफ देख लें तो हमारी गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी चलती दिखेगा, तो हमारी दृष्टि उस चलती हुई गाड़ी की तरफ होने से समझते हैं हमारी गाड़ी चल पड़ी, तो क्रिया तो हो रही है उस गाड़ी में, प्रतीत हो रही है हमारी में। इसी तरह से ये जीवात्मा जो स्वयं शुद्ध चेतन है, ये चेतन बुद्धि और मन और इंद्रियों की तरफ दृष्टि डालने से इनमें सदा क्रिया होती है। क्यों? अनित्य आपने भी मान लिया, क्रियाशील आपने मान लिया, क्रिया विकार वाला आपने मान ही लिया, इसमें क्रिया और विकार होता है, हलचल होती है, परिवर्तन होता है। इसी तरफ हमारी दृष्टि है, उससे मालूम होता है कि ये परिवर्तन तो ठीक है, बुद्धि के बैठ कर आप देखते हो, परंतु ये अप्राप्त तो नहीं है। तो अप्राप्त कैसे? दृष्टि को अप्राप्त थोड़ा ही दृष्टि उसमें गई, अप्राप्त नहीं है दृष्टि को, परंतु आपकी गाड़ी थोड़ी चली चली तो वो गाड़ी दिखती है, अपनी गाड़ी चलती हुई तो वो दिखना कब मिटे? जब वो चलने वाली गाड़ी की तरफ दृष्टि न रहकर और न चलने वाला स्टेशन, तो गाड़ी चलने वाली प्राकृत पदार्थ मात्र, तो गाड़ी चलने वाली प्राकृत पदार्थ मात्र और वो न चलने वाला ब्रह्म परमात्मा तत्व चेतन, उसकी तरफ जब दृष्टि होगी तो दृष्टि होगी तो मालूम होगा कि अरे अपने साथ संबंध ही नहीं है, चलने की क्रिया तो उधर होगी, हमारे तो चलना है ही नहीं। तो इस वजह से अनित्य क्या कहें? संबंध ही नहीं है, इस वजह से अप्राप्त है, स्वतः अप्राप्त है। तो अप्राप्त है बिल्कुल ये अनित्यता, तो फिर कहोगे तो उसके साथ मिलकर कहोगे, और अप्राप्त तो बिल्कुल है ही, अनित्यता से भी ज्यादा स्पष्ट है अप्राप्त, अप्राप्त अनित्यता से ज्यादा स्पष्ट है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चेष्टा, प्राप्त को नित्य प्राप्त है ये चीज, उसको अप्राप्त मान लिया। तो अप्राप्त किसके द्वारा माना? कि जो अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इससे ये हुई, इसकी कृपा है और कुछ नहीं। इस पर सदा टिका रह सकता है, बाहर की घटनाओं को मूल्य न दे, आदर न दे, हर्ग शोक न करे, राग द्वेष न होने दे, वे तो उसी दम बिताता रहे, सावधान रहे हरदम, तो उस रूप में स्थिति हो जाएगी। और पदार्थों के संयोग वियोग को लेकर हर्ष और शोक होता रहेगा, तो बाहर की बातें बनी वेदांत की कृति बनाओ, स्थिति पदार्थों में रहेगी, स्वरूप में नहीं होगी। ये खास इसकी गुर है, उपराड़ी है, खास समझने की बात है। जब तक दूसरे पदार्थ का लोभ है, अथवा भय है, अथवा राग है, अथवा द्वेष है, जैसे यो न रिष्यती न द्वेषती न सोचती और न कांक्षती, ये करोगे तो ये चिद्र ग्रंथि फच मिट जाएगी। और ये पदार्थों को लेकर, घटनाओं को लेकर, क्रियाओं को लेकर, व्यक्तियों को लेकर, और इसमें राजी और नाराज होते रहोगे, बस फिर स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। बातें कितनी बनाओ, संबंध विच्छेद होने के लिए उपाय बताया है मैंने, जो इतने दिन पढ़ा है, सुना है, समझा है, उसके अनुसार मेरी जो वृत्ति गई है वो वृत्ति आपको बताई है। ये जितना दृश्य पदार्थ है, किसी चीज में, किसी व्यक्ति में आप थोड़ा सा अनुकूल है, ठीक है, इतना मान ले, वहां से अंदर शुरू हो जाएगा। ये खास सार बात है, जहाँ आप अनुकूलता मान लोगे, प्रियता मान लोगे, थोड़े से कि स्वामी जी हमारे अनुकूल इतना मान लोगे, फिर जरूरत नहीं, फंस जाओगे तुम, पूरे के पूरे फंस जाओ। ये खास चीज है, अगर कोई इसको छोड़ना चाहे, स्वरूप में स्थिति चाहे, तो भाई व्याख्यान ही हमारे अनुकूल हुआ, ये भावा भी अनुकूल आई, ये रोटी भी अनुकूल मिली, कपड़ा भी अनुकूल मिला, ये स्वामी जी अनुकूल बोले, यूं बोल करके मन का लगाव हो जाएगा। अनुकूलता ज्ञान मात्र से बंधन नहीं होगा, ये भी सावधान रहना, अनुकूलता का ज्ञान बंधन नहीं होगा। तो अनुकूलता के साथ में जहाँ लगाव हुआ, रस लिया, सुख लिया, खिंचाव किंचित मात्र हुआ, रुचि मात्र किंचित हो गई, बस अब समझ लो पूरा बंधन है, अब कोई कमी नहीं रहेगी बंधन की। एक में रुचि होते ही उसके विरुद्ध में अरुचि हो जाएगी, रुचि अरुचि होती राग द्वेष हो जाएगा, और भी काम और क्रोध बन जाएगा, और काम और क्रोध नरकों का दरवाजा हो जाएगा। ये आया है हंस गीता में, एकादश स्कंद में सनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा, कहते गुणों में तो चित्त आविष्ट है और चित्त में गुण बस गए, इन दोनों का हम विश्लेषण कैसे करें? जो आपका प्रश्न है ऐसा कैसा प्रश्न, यही प्रश्न है आपका, चित्त में तो गुण आकर पदार्थ बस गए और पदार्थों में जाकर चित्त फंस गया हमारा, तो इन दोनों का अलगाव हम कैसे करें? ऐसा प्रश्न आया तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया। भागवत एकादश स्कंद में है, हंस गीता उसे पढ़ सकते हैं, तो उत्तर नहीं आया। तो प्रश्न पार तितीर्ष है, उस प्रश्न के पार जाने के लिए भगवान को याद किया। लड़के हमारे पूछे बाप को और ब्रह्मा को आवे नहीं उत्तर, तो भगवान को याद किया। प्रभु के याद करते ही भगवान कृपा करके हंस रूप धारण करके पधारे। हंस रूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा जी ने तो इष्ट को याद किया, वे बने वाहन, इष्ट होकर नहीं आए, गुरु बनकर नहीं आए, ब्रह्मा जी का वाहन बनकर के आए, हंस बनकर के आए। तो हंस बनकर क्यों आए? ब्रह्मा जी के पास में तो ये बात है कि लड़के मेरे से पूछे उत्तर नहीं आया, तो अभिमान आया ना, क्योंकि तो यही कारण है उत्तर न आने का, हम उत्तर देते हैं तुम्हारे वाहन हो गए, तब उत्तर आएगा। जहां शरीर को, संबंध को लेकर अच्छापना मंदपना कहीं आएगा तो वहां फंस जाओगे। इस वास्ते हंस बन करके उत्तर देने के लिए आए, और उसमें कारण लिखा है भागवत में दूसरा एक, कि उनको प्रश्न का पार क्यों नहीं आया, तो वहां कर्म धी शब्द आया है। मेरे को श्लोक याद नहीं है, मैंने पढ़ा, मेरे पर असर पड़ा, कि ब्रह्मा जी को उत्तर क्यों नहीं आया, कि वो कर्म में लगे हुए थे रात दिन कर्मों में, इस वास्ते इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तब हंस रूप होकर के आए तो उन शनकादिकों ने पूछा कि तुम कौन हो, प्रश्न पूछा, तो प्रश्न के उत्तर में हंस कहते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है ये शरीर के विषय, शरीर विषय में है कि आत्मा के विषय में है? शरीर के विषय में पूछो तो प्रश्न बन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो भूतों का बना हुआ शरीर वही मेरा शरीर है, ये तो अपरिचित में बनता है प्रश्न। जो भौतिक तुम्हारा शरीर वही हमारा शरीर, जो हमारा शरीर तुम्हारा शरीर एक है, इस बात से प्रश्न बन नहीं सकता। और आत्मा में ये प्रश्न बन नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा वही मेरी और मेरी आत्मा तुम्हारी, तो ये तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बन सकता, तुम कौन हो? तो सनकादिक टकराए, ये क्या उत्तर दे रहे हैं? ऐसा उत्तर दे रहे हैं तो फिर इसका प्रश्न का उत्तर है कि ये वास्तव में तुम्हारा प्रश्न नहीं बन सकता। और चित्त में गुण आविष्ट हो गया, गुणों में चित्त आविष्ट हो गया, ऐसे कैसे सुलझन हो? तो सुलझन दोनों का करना चाहते हो तो वह शब्द आया मद रूप उभयम त्यजेत, गुण और चित्त दोनों को छोड़ो, तब इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक प्राकृत पदार्थ है उनको तो लेकर लख देते हो और दूसरे प्राकृत को छोड़ना चाहते हो, यही तुम्हारी गलती होती है। अब हम मन को निर्विकल्प करना चाहते हैं, मन को और बुद्धि को निर्लेप और निर्विकल्प और निर्विकार करना चाहते हैं। साधक की ये भूल होती है, क्षमा करेंगे, भूल नहीं है, ठीक है साधन, परंतु जब तात्विक बात होती है, ऊंची बात होती है, तो ये भूल होती है। ये कहूंगा मैं कि मन को निर्विकल्प करना चाहते हैं और बुद्धि को भी निर्विकल्प करना चाहते हैं, तो बुद्धि और ये निर्विकार करना चाहती है, निर्विकार होने वाला नहीं है। निर्विकल्पता जो स्वरूप है उसमें स्थित होने से निर्विकल्प की तरह बुद्धि हो जाएगी, मन निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी। पर सम और निर्विकल्प होती तत्व से निर्विकल्प और सम हुई नहीं बुद्धि कभी, वो विकृति उसकी होती रहेगी जैसे गंगा का प्रवाह चला ज्यों। ऐसे स्पष्ट शब्दों में पुस्तकों में मैंने नहीं पढ़ा है, पर तुम्हें बात तत्व की बात जब पूछोगे तो ये बात कहनी पड़ेगी कि वो निर्विकार नहीं हो सकता। प्राकृत पदार्थ हरदम क्षण परिणामी है, कैसे निर्विकार बुद्धि होगी, कैसे निर्विकार मन होगा? तो वो निर्विकारता और निसंकल्पता, निर्विकल्पता, ऐसी निर्विकल्प समाधि, ऐसे जो शब्द आते हैं, वो केवल चेतन में स्थिति होने से उसकी निर्विकल्पता दिखती है। जैसे महाप्रलय के बीच में प्रकृति अक्रिय होती है, स्वर्ग में सक्रिय होती है, तो सक्रिय की अपेक्षा अक्रिय होती है। अगर प्रकृति महाप्रलय में भी अक्रिय रहे तो महाप्रलय के समय, महासर्ग के समय अंतर क्यों? अरे जीवों के कर्म परिपक्व हुए, परिपाक होकर एक अंबोशा पूर्ण हुई, फिर फल दिया, सृष्टि की रचना हुई, तो परिपक्व हुआ तो कच्चे से पके, ये मानना पड़ेगा। महाप्रलय के समय कर्म कच्चे थे और महासर्ग के समय कर्म पक्के हैं, तो कच्चा पकता है वो विकार हुए कैसे पकता है? इस बात के सक्रिय है प्रकृति उस समय भी, परंतु सृष्टि के समय जैसी सक्रिय है वैसी सक्रिय नहीं है, इस बात से प्रलय के समय अक्रिय कहलाती है। इसी तरह से मन और बुद्धि उस परमात्मा के स्वरूप में अधोस्थित होने से उनको निर्विकल्प कह देते हैं, सम कह देते हैं, परंतु तो स्वरूपता सम और निर्विकार थोड़ी हुई है मन और बुद्धि, वे तो अपने स्वरूप से चलते ही रहते हैं, परंतु वो चलते चलते स्वरूप में निर्विकल्पता हो जाने से मन के बाह्य संकल्प, बुद्धि के बाह्य संकल्प नहीं रहे, तो बाह्य संकल्प न रहने के कारण से स्थिरता हुई, उस स्थिरता से स्वरूप की स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। और उसी संकल्पता के साथ में अपने को मानेगा तो स्वरूप में स्थिति होगी नहीं, रहते हुए नित्य प्राप्त होते हुए अप्राप्त था, अगर उस स्थिरता से अपने स्वरूप में स्वतः प्राप्त हो जाती है, इस बात से कहते निर्विकल्प और निर्बीज ये समाधि हुई, उससे अपने परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो उससे प्राप्ति क्यों हुई? प्राप्ति तो पहले भी थी, किंतु उनके संकल्प विकल्प के कारण से ही सदाकार वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्ति सारूप्यता थी, इस बात से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति नहीं थी। वो वृत्ति सारूप्य होने पर भी वो तो वैसा जगह निर्विकार था, मन कितना ही संकल्प विकल्प वाला हो गया, कितनी बुद्धि विकार वाली हो गए, उस समय के स्वरूप में विकार थोड़ा ही आ गया, वो तो है जैसा का तैसा ही रहा, परंतु उस समय मन बुद्धि के द्वारा हम जानना चाहते हैं, यही जड़ के द्वारा चेतन को जानना चाहते हैं, ये जड़ता के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनित्य नहीं है, अनित्य के द्वारा अनित्य को हटाओ, अनित्य की अनित्य में स्थिति करो, अनित्य के साथ ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये करो तो आपके स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। अब इस स्थिति के करने के लिए साधक क्या करे वो बताओ, साधक क्या करे? साध राग और द्वेष न करे, इंद्रिय इंद्रिय राग द्वेष व्यवस्थित हो तय और न भस्मागते तो ये परिबंधन हो। वो सिद्ध ग्रंथि बुद्धि और चेतन के साथ में जो एकता, वो एकता की दृढ़ता होती है, एक पदार्थ अच्छा है एक मंदा है, ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है, इससे गांठ घुल करके सांगोपांग तैयार होती है, बहुत दृढ़ता होती है बंधन की। इस वजह से इसको दूर करना चाहो तो हरेक घटना में, हरेक पदार्थ में, हरेक क्रिया और परिस्थिति में आप राग द्वेष मत होने दो, रुचि और अरुचि मत होने दो, एक करो, चाहे अरुचि करो तो जड़ चीज मात्र से अरुचि कर लो, और रुचि करो तो जड़ चीज से अरुचि कर लो, और क्षमता रखो तो रुचि और दोनों छोड़ जड़ चीज के साथ में क्षमता कर लो, ये जिसके जो सुगम प्राप्त करे सो कर लो, तीनों में से तो काम ठीक हो जाएगा। अब उसके करने के लिए उपाय बताए तीन, उस रुचि को हटाने के लिए, अरुचि रुचि मिटाने के लिए उपाय तीन बताए, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग, ये तीन बताए, निषद ही कह सकते हैं हम, तीन बता सकते हैं। तो तीन का क्या उपयोग होगा? अब तो कर्मयोग में क्या होगा, कर्मयोग में दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, अपने स्वार्थ का त्याग, वो त्याग अपने स्वार्थ का त्याग यानी मेरा स्वार्थ हो जाए, मेरे को सुख मिले, इस वृत्ति को छोड़ते सोचे सबके लिए सुख, सबके लिए सुख, फिर मात्र क्रिया दूसरों के लिए सुख के लिए होगी, अपने लिए कोई क्रिया नहीं होगी, कोई भी किंचित मात्र भी पूर्णा जिस क्षण में अपने लिए नहीं होगी उसी क्षण जब जगत का विवेक स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, उसी क्षण सब कर्तव्य पूरा हो गया। कृतकृत्य होता है, कृतकृत्य तभी होता है कि जब अपने लिए कुछ करना नहीं रहता तब कृतकृत्य होता है। कृतकृत्य का अर्थ नहीं कि दुनिया का काम कर लिया कोई दुनिया का काम बाकी नहीं रहा, ये कृतकृत्यता नहीं है। और प्राप्त भी अर्थ नहीं कि इतना धन ले लिया तो प्राप्त हो गया, प्राप्त भी बाकी नहीं रहा, ये नहीं होगा। ऐसे भी इतने पदार्थों को जान लिया तो ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, ये नहीं है। तीनों बातें ये कृतकृत्य और प्राप्त प्राप्तव्य और ज्ञात ज्ञातव्य। ज्ञातव्य को तो जानने लायक को जान लिया, करने लायक को कर लिया, लेने लायक को ले लिया। कब? कि जब अपने लिए कुछ भी लेना बाकी नहीं रहेगा, तो अपने लिए लेना बाकी नहीं रहेगा तो कर्मयोग से सिद्धि हो जाएगी। कर्मयोग से सिद्धि हो जाएगी, दूसरों के लिए करते हैं सेवा रूप काम करते हैं सभी, तो सेवा करते हुए सेवा बढ़िया कर होगी। अब ध्यान देना, हरेक भाई बहन ख्याल करें, हम सेवा करते हैं परंतु सेवा करते हुए पदार्थों को अपना मानते हैं, सेवा करते हुए इंद्रियों को अपनी मानते हैं, सेवा करते हुए मन को अपना मानते हैं, सेवा करते हुए बुद्धि को अपनी मानते हैं, सेवा करते हुए मैंपना भी अपना मानते हैं। तब तक सेवा होकर संबंध विच्छेद नहीं होगा, किंतु जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उन्हीं के अंग पदार्थ है, उसी सृष्टि के ही अंग है, और उसी सृष्टि के अंग इंद्रियां है, उसी सृष्टि का अंग मन है, उसी सृष्टि का अंग बुद्धि है, उसी सृष्टि का अंग ही एक देशी मैपन है। वो मैपन सबका सब उसी की इंद्रिय में लग जाए, अपने में न लगे, ये सेवा होते अहंकार के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा अपने लेने से। तो कर्मियों के द्वारा इस विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञानियों के द्वारा कैसे होगी? तो ज्ञानियों के द्वारा सेवा करना नहीं है, किंतु ये मेरा स्वरूप नहीं है। कौन स्वरूप नहीं? ये जो पदार्थ दिख रहा है भौतिक, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसके बाद ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये प्राण मेरा स्वरूप नहीं है, इंद्रिया मेरा स्वरूप नहीं है, मन मेरा स्वरूप नहीं है, बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है, और बुद्धि के देश में जो मैं कर रहा है ये मैंपन भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये मैंपन एक देश में दिखता है, एक देश में क्यों दिखता है? कि देश और काल के पकड़ने से एक देश में मैंपन दिखता है। हम एक देश को मान लेते हैं, एक काल के साथ हम संबंध जोड़ लेते हैं, अभी मैं हूँ इस देश में हूँ। ऐसे चाहे अंतकरण देश मान लो, चाहे कोई मन बुद्धि देश मान लो, चाहे शरीर देश मान लो, उस देश के साथ में अपनापन हो गया। काल के साथ में अभी मैं हूँ, उस समय मैं पहले था, अगाड़ी रहूंगा, परंतु अगाड़ी पहले अभी तीनों कालों को पकड़ करके जो मैंपन है, इस कारण से ही एक देश ही पन मैं दिख रहा है। इस काल के साथ वस्तुओं के साथ जो पहले मन बुद्धि इंद्रियां कह दी, और वस्तु और देश के साथ जब आप मानोगे नहीं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, देश मेरा स्वरूप नहीं है, काल मेरा स्वरूप नहीं है, वस्तु मेरा स्वरूप नहीं है, किंतु ये तो परिवर्तनशील प्राकृत पदार्थ है और मैं तो केवल साक्षी मात्र दृष्टा मात्र हूँ, ऐसा जब अपने स्वरूप का अलग अनुभव होगा तो ज्ञानियों की तरह प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप नहीं है वो छोड़ते चले जाओ, जो स्वरूप नहीं छोड़ते चले जाओ, जो स्वरूप नहीं छोड़ते चले जाओ, जहाँ तक आपको छूटे वहां तक अंत तक छोड़ते ही चले जाओ, आप स्वरूप सृष्टि शेष रहेंगे, जो बाकी आप साथ रह जाएगा। ये ज्ञानियों के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी को भक्ति योग के द्वारा कैसे करें? भक्ति योग के द्वारा, तो भक्ति योग के द्वारा है कि मेरा नहीं है, भक्ति योग के द्वारा मेरा नहीं, हमारे प्रभु का है। तो क्या संसार मात्र प्रभु का है, शरीर मेरा प्रभु का है, मेरी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां प्रभु की है, मेरे प्राण प्रभु के हैं, मेरा मन प्रभु का है, मैं ये मन आदत्व मई बुद्धि निवेश है, बुद्धि मेरी नहीं भगवान की है, और अस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं मेरा नहीं मैं प्रभु का हूँ, मेरे कहने वाली कोई चीज नहीं रही, सब प्रभु की चीज रहेगी। जैसे समस्त सृष्टि है जो कि प्रभु की है, उससे हम मुक्त हैं, उसके बनने बिगड़ने पर हमारा कोई शोक चिंता हर्ष नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि मात्र वो हमारी नहीं प्रभु की है। ऐसे इस सृष्टि का सबका सब मालिक वही है, जो व्यक्ति का मालिक है वही समष्टि का मालिक है, और जो समष्टि का मालिक है वही व्यक्ति का मालिक है। समष्टि का मालिक तो प्रभु और व्यक्ति का मालिक आप, ये आपने करी गलती बेईमानी, इस छोड़ करके प्रभु को सब मान लिया, प्रभु का ये मेरा कुछ नहीं, तो मेरा तो मैं भी नहीं है और मेरा कहाँ होगा? तो उस मैं के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगी मुक्ति। तो आप चाहे कर्मियों के द्वारा कर लो, चाहे ज्ञानियों के द्वारा कर लो, चाहे भक्तियों के द्वारा कर लो, जिसमें आपको शक्ति पड़े वैसे कर लो, जिसका जहाँ मन माने वैसे ही कर लो, वहाँ भी वहाँ अपने स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। तो उसमें कोई विकार नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है, उसमें कुछ भी है योगा क्यों है? इस वास्ते कहे खोया कहे सो बावरे, अरे पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यो का क्यों भरपूर? जब लग काटी खिचड़ी तब लग खदबद हो, संत राशि जब अपने खदबद करे इनको।
ठीक है ना, क्या है कर्मियों का मार्ग, कर्मियों में बताया, सेवा जो कराए शाम में,
हाँ पदार्थ भी रुपये पैसे भी भगवान की बिल्कुल फर्क नहीं है ही नहीं। इस वजह से फर्क तो तीनों में तो फर्क में रहता है, साधन प्रणाली में फर्क है। कर्मयोगी तो जनता को जिम्मेदार मानता है, ये जनता इसकी सेवा करता हूँ, और जनता न माने तो समझे ये जगत है, ये जगत की चीज है हमारे पास में, जगत की सेवा में जगत की चीज लगा देनी, घर से कुछ नहीं लगाना है, ये कर्मयोग हो गया। और प्रभु की सेवा में लगाने प्रभु मालिक ये ज्ञान कर्मयोग हो गया, ये हो गया भक्ति योग हो गया है, और मेरा कुछ था ही नहीं, ये ज्ञान योग हो गया। अपने साथ संबंध विच्छेद करना है, जगत का मान कर कर ले, प्रभु का मान कर ले, अपना नहीं है ईमानदार से कर लो, एक ही होगा। बात यह कि यथान की प्राप्ति थे स्थानम तक योगी अभिगम्य थे, एक इंसान की योगन चाहिए पश्चिम पश्चिदी। और जब तक मन को अपना मानोगे, बुद्धि को अपनी मानोगे, बुद्धि की समझ को अपनी मानोगे, ये बातें सुनी सुनाई ये भी मेरी बातें मानोगे, तब तक मुक्ति नहीं होगी। बातें भले ही बनाओ आप कितनी, बंधन विच्छेद नहीं होगा। वो कहते हैं प्रकृति को किसी कार्य के साथ संबंध जोड़ लो, वो अपने साथ पूरा का पूरा संबंध जुड़ा रहेगा, किंचित मात्र जोड़ लो। और किंचित मात्र नहीं रहता संबंध रहेगा ही नहीं, था ही नहीं संबंध। अब जो संबंध था ही नहीं, इस वास्ते उसका अप्राप्त है, नित्य अप्राप्त है वो तो, और अपना स्वरूप नित्य ही प्राप्त है, इस वास्ते प्राप्त कहाँ है, अप्राप्त को अपने पकड़ रखा है, ये हमने गलती करी। और इनकी ज्यादा पकड़ने के कारण से जो नित्य प्राप्त है उसको भूल ही गए, मन है ही नहीं जू हो गया, वो तो है ही नहीं जू हो गया, अरे नहीं है जो है जू हो गया, ये चिंतन ग्रंथि है। अरे इसको खोलना है और कहने में प्रकार आपकी जो मर्जी आवे उस प्रकार से आप कर लो, कृतकृति हो जाओ। मैं करने की बात छूट जाएगी ना मन बुद्धि तक, आप समझना हो तो समझ लो, आपके जो भोगे पड़े जो कर लो, समझने से हो तो समझ लो, अर्पण कर दो, अर्पण कर दो, क्या करना क्या कर। उसमें कुछ फर्क नहीं आता है, मेरा मन बुद्धि यही फर्क आता है, कुछ फर्क आया नहीं, होगा नहीं, फर्क होगा नहीं, हुआ नहीं, कभी नहीं होगा। उनके साथ जो मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, मैं एक देश में हूँ, यही गलती है, और कोई गलती कभी हुई ना होगी ना हो सकती है। मान्यता है केवल ये मान्यता, इस मान्यता को हटाना है, चाहे आप ज्ञान के द्वारा हटा दो, चाहे शरण होकर हटा दो, चाहे उपकार करके हटा दो, आपकी जो शक्ति पड़े जो हटा दो, समझ के द्वारा हटा दो, केवल समझ के द्वारा हटा दो, हट जाए तो, पर तो समझ समझ बातें कर लो, हटेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। अरे क्रिया द्वारा हटाओ नहीं, उपकार करके मैंने सेवा दिया अहंकार करोगे तो हटेगा नहीं। अरे भगवान के भक्त हम तो ऐसे ऐसे हमारी यू होना चाहिए, यू होना तो हटेगा नहीं, तो पूरा का पूरा फंसेगा थोड़ा। तरंगा था अभी हमें इन्हें भावा संगा समुद्र आयन, तरंगा समुद्र बढ़ जाएगा।
ज्ञान में तो आपने कहा कि
तो ज्ञान क्या फंसा,
ज्ञान में
ज्ञान के अंदर अनुकूलता प्रतिकूलता करते हैं वहाँ पर राग इंद्रिय इंद्रिय से रागव द्वेष व्यवस्थित हो तयोर न लक्ष्म आगत तो ये परिपंथी लो। भगवान कहते हैं राग और द्वेष यही तुम्हारे असली शत्रु है, और कोई शत्रु नहीं। ये कहीं भी राग करेगा कहीं द्वेष, एक दिन राग करेगा एक दिन द्वेष हो ही जाएगा। एक बढ़िया घटिया ये समझ अच्छे ये समझ अच्छे नहीं, ये बड़े त्यागी थे त्यागी नहीं, ये दो चीज पैदा हो ही जाएगी प्रार से, एक दो चीज हुई बंधन होगा, राग द्वेष होगा, हर कोई शोक होगा, बंधन होगा, जन उन्मरण होगा, सुख दुख होगा। लगाव पड़ो बिल्कुल ही लगाव की जरूरत नहीं है, नहीं लगाव केवल कतरे छोटे सूचो। और जिसकी संसार का सुख भी लेना और कुछ परमात्मा प्राप्ति चाहता है उसके लिए भक्ति भी ठीक होगा, और संसार सुख बिल्कुल नहीं चाहता उसे ज्ञान भी ठीक होगा। खेत में बता दे उन्हें संसार के पदार्थ से वैराग्य है वो ज्ञान योग में चल सकेगा, अरे भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान योग में चलना मुश्किल है। और कुछ राग और कुछ बैराग बीच में है उसके लिए भक्ति योग ठीक है। अगर भोगों में पदार्थ हम आसक्त है वह आसक्ति केवल अपने भोग के लिए नहीं है, पदार्थों का हमें ज्ञान होता है, चित्त खिंचता है, उसका अर्थ ये इन पदार्थों के द्वारा दूसरों की सेवा करो, इतना बदल दो फिर वो कर्मयोग हो जाएगा। हाँ तीन दोस्त दूर हो जाते इससे, मैंने अपनी प्रक्रिया कही जिससे। हाँ हाँ मैं तो तीनों से मानता हूँ, तीनों से प्रक्रिया मेरे पड़ी हुई थी, यूँ है कि मल दोष दूर होता है कर्म योग से, विक्षेप दोष दूर होता है भक्ति योग से, और आवरण दोष दूर होता है ज्ञान योग से। परंतु मेरे से कोई तटस्थ होकर पूछे निष्पक्षता से, तो मैं तो एकों से तीनों दोष दूर मानता हूँ। कर्मियों से तीनों दोष दूर हो जाएंगे, भक्तियों से तीनों दोष दूर हो जाएंगे, ज्ञानियों से तीनों दोष दूर हो जाएंगे। अरे कोई तीनों से अलग अलग माने तो वैसे ही हमारे बिल्कुल उसमें भी हमारा मतभेद नहीं, कोई हमारा ऐतराज नहीं है, वैसे मानो है? हमें दोनों बात दिखती, हमें दोनों ही दिखती ठीक कि मल विक्षेप मल दोष दूर होता है कर्मयोग से, उपासना से विक्षेप दोष दूर होगा, और आवन तो ज्ञान से ही दूर दूर होगा। ठीक बात है, ये भी अच्छी मालूम देती है, संतों की प्रक्रिया शास्त्रों में है, ये भी बढ़िया मालूम देती है। और केवल कर्मयोग से 3000, भक्तियों से केवल 3000, उससे 3000, ये बात ठीक मालूम देती है। और गीता जी के श्लोकों से सिद्ध होती है कि तीनों दूर होना कैसे कैसे सिद्ध होता है। अभी तो समय नहीं है, फिर आप पूछो तो बताया जा सकता है गीता के कौन श्लोकों से कैसे कैसे दूर होता है, उसे हमें तो ठीक ही मालूम प्रतीत होता है। समझ है क्या भगवान जाने और आप जाने, हमें ऐसा प्रतीत होता है। इस बात से हमारी बात कोई माने तो आनंद की बात, न माने तो कोई बात नहीं है। आपको बढ़िया लगे वो माने न बढ़िया लगे, अपने पड़े माल हर दिया, अपने घर में दुकान है दिखा दी, ये माल है भाई मत जाओ खरीदो, मत खरीदो कुछ मत खरीदो, सब खरीदो थोड़ा खरीदो ज्ञान हुआ इसमें क्या है, अधिक नहीं है। ज्ञान भी उपासना भी कर्म भी तीनों तीनों में है। कर्मयोग में तीनों आएगा, ज्ञान योग में तीनों आएगा, भक्ति योग में तीनों आएगा। ज्ञान योग भक्ति योग कर्मयोग तीनों साथ में रहेगा, मुख्यता एक एक रहेगी। इस बात उनका नाम है ज्ञान योग में, ऐसा नहीं भक्ति योग नहीं है, ज्ञान योग में कर्मयोग नहीं, यही बात नहीं होगा। कर्मयोग में ज्ञान योग भक्ति योग दोनों रहे, भक्ति योग में कर्मयोग ज्ञान योग दोनों रहेंगे, पर एक की मुख्यता रहेगी। इस बात उनका नाम है। अरे अलग अलग देखो तो शरीर की प्रधानता से कर्मयोग होगा, अंतकर्म की प्रधानता से भक्ति योग होगा, और बुद्धि की प्रधानता से ज्ञान योग होगा।